रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अतुलित बल धामं हेम शैलाभुदेहं दनुजवन कृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रामचरितमानस में शिवजी महाराज ने पार्वती जी को एक प्रश्न का जितना लंबा उत्तर दिया, इतना विस्तार से किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया कि भगवान के अवतार लेने के क्या हेतु है। राम जन्म के हेतु अनेका अनेक है, वो कहते ही जा रहे हैं। भगवान शंकर जय और विजय की कथा सुनाई, जलंधर की कथा सुनाई, नारद जी का चरित्र सुनाया और मनु और शत्रुपा की तपस्या बताई। इतना कहते कहते भी भगवान शंकर बोलते हैं कि हे उमें भगवान के अवतारों को कितना गिनाऊं, कितना करूं, कोई अंत नहीं है किस कारण से भगवान। क्योंकि भगवान कई 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 बार अवतार लेते हैं, किस समय कैसे, किस समय कैसे अवतार लेते हैं भगवान जाने। अवतार अपनी मर्जी से भी ले सकते हैं, पर तुम्हारा मन में भगवान में लगाने के लिए और भक्ति की तरफ खींचने के लिए बोलता हूं कि देखो नारद जी का शाप भी भगवान ने स्वीकार किया और मनु और शत्रुपा के प्रेम को भी स्वीकार किया। यह इतिहास पुनीतयति उमहि कहि वृषकेतु भरद्वाज सुनु अपर पुनि राम जन्म कर हेतु। अब प्रताप भानु का प्रसंग सुनाते हैं। देखो ये प्रसंग है ना, ये प्रसंग खूब गहराई से सुनने से समझ में आता है। यूं तो प्रत्येक चीज गहराई से आती है समझने में, तो इस प्रसंग में कई प्रकार की बातें ऐसी प्रश्न पे पैदा होती है, इनका समाधान गहराई से सुने बिना नहीं होता। इसलिए इस प्रसंग को संक्षेप में कहेंगे पर गहराई से उतर करके विचार करना है। याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं कि हे भरद्वाज जी, भगवान शंकर ने पार्वती के प्रति जो और कारण बताया था वो मैं तुमको सुनाता हूं। सारे संसार में कैकेय देश एक राजा था, कैकेय देश था, उसका एक राजा था सत्यकेतु। उस सत्यकेतु बड़ा धर्मात्मा, नीति निपुण और बहुत ही श्रेष्ठ आचरण वाला राजा था। उसके दो लड़के थे, एक का नाम था प्रताप भानु और छोटे का नाम था अरिमर्दन। दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम। राजा ने देखा कि हमारे बेटे सयाने हो गए तो अब भगवान का भजन कब करेंगे भाई, तो ये राजपाट तो कब तक है, जब तक पीछे कोई पीढ़ी तैयार नहीं हो जाती। घर गृहस्थ का भार कब तक संभालना है, जब तक बेटे योग्य नहीं हो जाते। बेटे योग्य हो जाए, आराम से बेटों को घर का भार सुपुर्द कर दो और अपना भगवान के भजन में समय लगाओ। तो जेठे सुतई राज नृपदीना, बड़े लड़के को राजा ने अपना राज्य दे दिया और हरिहित आप गवन बन कीना। और भगवान की भक्ति के लिए सत्य केतु भजन करने के लिए चले गए। अब प्रताप भानु राजा हो गए। उनके एक धर्मरुचि नाम का मंत्री था, शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान। सत्यकेतु नाम के राजा के पास, सॉरी प्रताप भानु राजा के पास बहुत बड़ी विशाल चतुर्गिणी सेना थी। सब योद्धा बड़े बलवान थे। अपना राज, अपनी सेना, ये सब देख करके वो प्रताप भानु बड़ा खुशी में और आनंद में रहता था। सात द्वीप वाली पृथ्वी का वो शासक था। अपने सारे संसार को अपने भुजा बल के अधीन समझता था। वह धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों का सेवन करता था। अर्थात धर्म बढ़े ऐसा काम करना, और अर्थ बढ़े वो काम करना, और आवश्यक काम की पूर्ति करना, और मोक्ष की तरफ चलना। ऐसे धर्मात्मा पुरुष के यहां पृथ्वी पर कोई चीज की कमी नहीं। मानो काम धेनु सी पृथ्वी हो गई, कोई कमी नहीं। प्रजा भी बहुत आनंद में रहे, पितर भी बड़े प्रसन्न, संत भी प्रसन्न, गुरु सब, क्योंकि जिसके आचरण अच्छे होते हैं उससे सब प्रसन्न होते हैं। खूब दान पुण्य भी करता था, घर में बैठ करके शास्त्र का श्रवण करता था, लोगों के आराम के लिए खूब कुएं, तालाब, बावड़ियां, बगीचे खूब अच्छे बना रखे थे। लोगों में स्वाभाविक ही धर्म के प्रति रुचि थी, और हजारों हजारों बार उसने बहुत बड़े बड़े यज्ञ भी करवाए। और यज्ञ का कोई उद्देश्य नहीं था, ये हृदयन कछु फल अनुसंधान, ये खास बात है। इसकी विशेषता क्या थी कि कोई लौकिक फल की उसके अंदर इच्छा नहीं थी। इतना पवित्र राजा, और करई जो धर्म कर्म मन बानी वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी, जो कर्म करता था वो भगवान वासुदेव के अर्पित। इतना वो भगवान का भक्त और ज्ञानी, ऐसा ये प्रताप भानु और ये रावण बन गए हैं। यही अगले जन्म में रावण बना। क्यों बना आप बताते हैं, चलते हैं कि चड़ीबर बाजी बार एक राजा, एक बार वो शिकार खेलने के लिए गया। शिकार खेलते खेलते विंध्याचल पर्वत के गंभीर जंगलों में चला गया। वहां एक सुअर को देखा, वो था मायावी सुअर। राजा को ये पता नहीं था, वो कभी तो प्रकट होवे और कभी छिपे, कभी प्रकट हो। राजा देखो शिकार में एक मनोवैज्ञानिक भावना होती है कि जब वो लक्ष्य बना लेता है ना, फिर वो ये नहीं देखता है कि कहाँ गया, कितनी दूर गया, और कितना समय हुआ, और मैं वापिस जा पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, रास्ता कौन सा, कुछ पता। वो शिकार के पीछे रहता है। तो वो शिकार के पीछे चलते चलते उसको कुछ पता नहीं चला। कोल कराल दसन छवि गाई, तन विशाल पीवर अधिकाई। कोल माने सुअर, कराल माने तीक्ष्ण, बड़े लंबे लंबे दांत थे उसके, शरीर बड़ा मोटा ताजा, और घुरघुरात हाय आरो आए, चकित बिलोकत कानू उठाए, ऐसा वो ये जो है सुअर घोड़े पर बैठे हुए हमारे ये महाराज प्रताप भानु जी। तो प्रताप भानु जी चले, विशाल सुअर को देखा और उसके बस चपरी चले हुआ है सटो की नृप। राजा ने उसके ऊपर चाबुक लगाया और उसका पीछा किया। तो तब तक जो है उस सेना छूट गई, सब छूट गए, और आगे आगे तो सुवर, पीछे पीछे चलते चलते बहुत दूर चला गया, चलते चलते दूर भी चला गया और दिन भी समाप्त हो गया, रात हो गई। खेद खिन्न क्षुद्धित त्रिषित, राजा की क्या दशा हो गई, पीछा करते करते बेचारा थक गया, भूखा था प्यासा था, तो सोचे कुछ खाने पीने का कहीं प्रबंध तो हो, ऐसे ऐसे व्याकुल होकर के खोजने लगा तो एक आश्रम दिखाई दिया, आश्रम में पहुंच गया। अब देखो क्या होता है, देखो ये प्रसंग हम समझते थे कि गोस्वामी जी ने लंबा कर दिया, बोरियत कर दी, कितना बढ़िया नारद जी का प्रसंग था, कितना बढ़िया मनु शत्रुपा की भक्ति का प्रसंग था, ये प्रसंग बोरियत का है, बोरियत का नहीं है, ये प्रसंग इतना सावधान करने का है। राजा कितना अच्छा श्रेष्ठ धर्मात्मा था, वो इसका पतन क्यों हो गया, अब ये चलिए। तो फिरत विपिन आश्रम एक देखा, तह बस नृपति कपट मुनि वेशा, वहां पर मुनि के वेश में एक संत को देखा, वो वास्तव में कपटी था। राजा ने उसको जो है देखा तो उन्होंने संत समझा, और वास्तव में वो कौन था, वो संत नहीं था, वो मुनि नहीं था, वो जान करके मुनि का वेश धारण किया हुआ था, एक राजा जिसके राज्य को इसी ने मारपीट करके भगा दिया, उसका राज्य खोस लिया, लूट लिया, और ये अपना सब कुछ छोड़ करके साधु का वेश बना करके जंगल में रहने लग गया। मन में थी बड़ी जलन इसके, मेरा राज्य चला गया। उसको खोलते हुए बोलते हैं कि जासु देश नृपलीन छड़ाई, समर सेन तजी गयउ पराई, जिसके राज्य को इस राजा ने प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो वहां से भग गया था, समय प्रताप भानु कर जानी, आपन अति असमय अनुमानी गयउ नगरीय मन बहुत गलानी, सेना यूं थी, सेना पर कब्जा कर लिया प्रताप भानु ने, प्रताप भानु ने कब्जा कर लिया, तो उसने देखा कि अब वापिस मैं अपनी राजधानी में जाऊंगा तो स्त्री बाल बच्चे सब मुझे कहेंगे, उनको भी दुख होगा मुझे भी दुख होगा, तो वो लड़ाई के अंदर तो खड़ा ही था, सेना वगैरह सब उसकी पकड़ में आ गई, और वो सेना में तो वापिस तो राजा वहां राजधानी में तो गया नहीं, अपने जंगल में आ गया। दिस उर मारी, उसने अपने अंदर ही अंदर क्रोध को मार लिया, क्या करे वो बस कुछ चले नहीं, तपस्वी का वेश बना करके बैठ गया। उसको कभी आशा ही नहीं थी कि मुझे प्रताप भानु मिल सकता है क्या, वो तो बैठा था कोई न कोई किसी उपाय से बदला लेवे, या नहीं बदला लेवे तो बाबा सबसे मुंह छिपा करके जंगल में बैठे, कोई हमको देखे नहीं, किसी से हम मिले नहीं, अपनी जान छुड़ाने के लिए बैठा था वो, और कोई ऐसा मौका मिल जाए तो कभी देखा जाएगा, पर वो वहां पर अकेला रहने लगा। विपिन बसई तापस के साजा, तपस्वी का वेश बना लिया। इधर बिचारे प्रताप भानु को पता नहीं, अब देखो दाढ़ी वगैरह बढ़ जाए ना तो एक आदमी का चेहरा और का और हो जाता है, और फिर ये तो शत्रु पक्ष का राजा था ना, सेना लड़ती थी, हूं राजा हूं, राजा से आपस में कमी मिलना जुलना होता था। अस्तु, तो ये प्रताप भानु आश्रम में गया और बड़े प्रेम से प्रणाम किया संत जान करके, और राजा बेचारा प्यासा था भूखा भी था, भूख प्यास में आदमी की बुद्धि यूं ही खराब हो जाती है, तो राजा ने जाकर के प्रणाम किया, उसने पहचान लिया अरे ये तो वही प्रताप भानु है, तो बिल्कुल ऐसे संत बना हुआ है, आइए आइए कहां से आए, कौन है, आपका नाम क्या है। तो राजा ने अपना नाम नहीं लिया, परम चतुर न कहु निज नामा, अपना नाम तो कुछ बताया नहीं, और उसकी भूख प्यास को देख करके कहा, अच्छा आप भूखे हो, आओ आओ हमारे आश्रम में जल रहा, तालाब रहा, खूब आराम से आप नहाओ धो, घोड़े को भी आप नहलाओ धुलाओ, जल पियो और आप जो है फल खाओ। तो जल पिया, फल खाया, राजा बड़ा खुश हो गया और सूर्यास्त जान करके उसको सोने के लिए बड़ा आसन दे दिया, सो विश्राम करो। अब वो तपस्वी है, वो बोलता है, भाई आप अकेले इस घनघोर जंगल में कैसे आए, आप जवान हैं, शरीर से बड़े सुंदर हैं, आप अपने जीव को अपने जीवन को हथेली पर लेकर जोखिम में डालकर ऐसे घनघोर जंगल में कैसे आ गए। हाँ ऐसा लगता है आप कोई चक्रवर्ती सम्राट हैं, मुझे लगता तो ऐसा है। क्या लगता है, धूड़ लगता है, कपटी कपट से बोलता है वो जानता था, लेकिन ऊपर से बोलने का तरीका देखो उसका। अब ये इसी कारण से राजा को क्या तकलीफ आएगी देखो, चक्रवर्ती के लक्षण तोरे देखत दया लागे, तुमको देख के मुझे बड़ी दया आती, अरे इतने बड़े सम्राट बेचारे जंगल में भूखे प्यासे थके मांदे कोई रास्ता भूल गए, बात क्या है, आप अपना परिचय तो दीजिए महानुभाव। तो परिचय देते हुए बोलता है, नाम प्रताप भानु अवनीसा, तासु सचिव में सुनहु मुनीसा। हे मुनिवर, आपने प्रताप भानु नाम का कोई राजा सुना है क्या, यदि सुना है तो ठीक है, नहीं सुना हो तो हम बता देते हैं कि प्रताप भानु जो सारी पृथ्वी का राजा है ना, उसका मैं मंत्री हूं, अपना असली नाम नहीं बताया, का मैं उसका मंत्री हूं और यही मैं शिकार खेलते खेलते आया था, रास्ता भूल गया, परंतु मेरा भाग्य देखो आप जैसे संतों के दर्शन हो गए, नहीं तो महाराज हम कहां रहने वाले, हमारी राजधानी कहां, घनघोर जंगल में आप अकेले, हम प्रयास करें तो आपके दर्शन नहीं हों, ऐसे दुर्लभ आपके दर्शन कि हम हजारों प्रयास करें तो भी दर्शन नहीं हों, लेकिन हमारा भाग्य देखो महाराज, होनार की गति देखो, क्या पता कोई आपसे बड़ा हमें अनुग्रह मिलने वाला है, कृपा होने वाली है, आपके दर्शन हो गए। हाँ हाँ ये बात तो है, परंतु सुनो देखो मंत्री जी, अंधेरा हो गया और आपका नगर 70 योजन है, 70 योजन माने 280 कोस, 280 कोस का अर्थ क्या हुआ, 88 84, 840 किलोमीटर, 840 किलोमीटर है आपका गांव घर, तो कोई बात नहीं, घनघोर ये जंगल है, घनघोर रात्रि है, कहां जाओगे कहां रहोगे, आज हमारे यही रह जाओ, बसो आज अस जाने तो मैं जाए होते भी आन, प्रातःकाल उदय रवाना हो जाना। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि देखो जो होनार होती है वो होनार बड़ी प्रबल होती है, आपुनो आवई ताई पही ताई तहां ले जाए। एक बार एक कबूतर था, वो एक मंदिर के ऊपर भी बैठा है, मंदिर के ऊपर छजवाल होती, छजवाल के ऊपर बैठा हुआ था, तो वहां इंद्र आया, इंद्र ने उस कबूतर को देखा, देख करके खड़ा हो, कई देर तक देखता रहा हो, तो इंद्र के साथ वालों ने कहा, हे त्रिलोकीनाथ आप ये क्या कर रहे हो, स्वर्गाधिपति इस कबूतर को गौर से कैसे देख रहे हो। गौर से क्या देख रहा हूं, मैंने आज जैसा अचंबा देखा ऐसा अपने इंद्र पद पर बैठने के बाद कभी ऐसा अचंबा नहीं देखा। कि ऐसा क्या अचंबा है, कि भाई मैं देवताओं का स्वामी, यमराज जी मेरे नीचे काम करते हैं। यमराज जी ने मुझे बताया था कि इस कबूतर की उम्र आज ही के दिन पूरी होने वाली है और एक बाद से पूरी होने वाली है। मैंने ध्यान लगा के देखा कि बाज अभी बहुत दूर है और अब थोड़ी देर में ये सूर्य अस्त हो जाएगा। तो ये कबूतर इतना सुरक्षित है, इतना हंस रहा है, अपने परिवार में गुटरगु 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 कर रहा है, तो बाज इसको कब आएगा, कैसे मारेगा, क्या होगा। इतने में ही जोर से आंधी आई, जोर से आंधी, वायु देवता आ गए। वो आई जोर से आंधी, एक बाज था, वो शायद वही बाज था, वो आकर के सीधा जोर से आंधी से आकर उसी कबूतर के ऊपर आके गिर गया और उसको पकड़ लिया। तो इंद्र ने पूछा बाज से कि उससे पूछा वायु से कि क्या बात है वायु, तुम कैसे आए यहां। वायु भी इंद्र के नीचे ही काम करता है। तो वायु ने कहा कि महाराज मुझे यमराज जी ने कहा कि मरेगा ही नहीं, आज तो इसका तो मरने का दिन है और वो उसी बाज से मरेगा और वो बाज आ नहीं सकता है, वो बाज जंगल में है और ये काम तुमको करना है, तो मैं जोर से वायु से इसको धक्का देके लेके आया हूं। तब इंद्र ने विचार किया कि भाई आपुन आवई ताही पही ताही तहां ले जाए, तुलसी जैसी भवितव्यता तैसे मिले, जैसे होनार होती है वो उसको वहां पर अपने आप ले जाता है और वो काम हो ही जाता है। राजा ने उसकी बड़ी प्रशंसा की, अरे आप जैसे ऋषि मुनि कितने दयालु होते हैं, आप हमारे पिता के समान हैं, हम आपके सेवक हैं, हम आपके पुत्र हैं। ये संत महात्मा प्रजा के ऊपर दया दृष्टि रखते हैं ना, तभी प्रजा में सुख शांति रहती है। एक बात पूछूं महाराज, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपको किस शुभ नाम से पुकारा जाता है। तो वो तो पहचान गया था कि ये तो प्रताप भानु है, लेकिन उसने उसको सही बात का उत्तर नहीं दिया। आ उसको पीछे की सब बात याद आई, राजा को, कपट कपटी मुनि को, ओ क्या मेरा सुख था, क्या मेरा आराम था, और इस राजा ने मेरे सब सेना को कब्जे में कर लिया, राज्य छीन लिया। अवा अनल इव सुल गई छाती, जैसे कुम्हार का अवा जलता रहता है अंदर ही अंदर, वो आग बाहर नहीं आती, ऐसे उसके अंदर का क्रोध अंदर ही रहा। अब उसने देखा अब ये मेरे चक्कर में आ गया, अपने बैर को, अपने बैर विरोध को अंदर संभाल करके ऊपर से बहुत सरलता से बोलने लगा, अच्छा तुम हमारा नाम पूछना चाहते हो, हमारा नाम तो भिखारी है, भिखारी नाम हमार भिखारी अब निर्धन रहित निकेत, अब हमारा नाम भिखारी है अब। तो राजा में बुद्धि हो तो समझ लो कि अब भिखारी है, अर्थात पहले हम राजा थे, भिखारी का उल्टा तो राजा ही होता है। नाम भिखारी, नाम हमार भिखारी अब निर्धन रहित निकेत। राजा ने कहा महाराज आपकी वाणी में कितनी निरहंकारिता है, इतने बड़े ज्ञानी महात्मा संत अकिंचन होकर के अपने आप को भिखारी मानते हैं आप। तुम सम अधन भिखारी अगेहा होत विरंच शिवय संदेहा, आपको कोई भिखारी कहे तो महाराज ब्रह्मा जी को संदेह हो जाए, शंकर जी को संदेह हो जाए, आप भिखारी, आप तो, अरे संत तो महादाता होता है, सबको देने वाला होता है, आप अकिंचन है, माने आपके पास अपना करके कुछ नहीं होता, सब उदारता से दुनिया को दिए रखते हैं। ये तो आपकी बहुत बड़ी महिमा है महाराज। तो महाराज आप जैसे भी हैं सो हैं, मेरे पर आप कोई कृपा कीजिए। एक संत से मेरा मिलना हुआ तो कोई न कोई आप मेरे पर ऐसी कृपा कीजिए, कुछ ऐसा काम कीजिए, आशीर्वाद दीजिए मुझे। अब उस कपट मुनि ने देखा कि राजा मेरी तरफ विश्वास के साथ बढ़ता जा रहा है, तो कहने लगे देखो जी बात यह है राजन, यहां बसत बीते बहुकाला, हम तो यहां बहुत दिनों से रह रहे हैं, क्योंकि मैं जहां भी गया ना वहां लोगों के अंदर मेरी बड़ी मान्यता हो गई। और आप जानते हो कि जिस आदमी को मान्यता स्वाती नहीं है, लोक मान्यता, लोकों में मान बढ़ाई आदि, उसको वो आग के समान जलाती रहती है। मैं जहां जाऊं दुनिया इकट्ठी हो जाए, क्या बताएं, हमारे पास कुछ ऐसी चीजें हैं कि दुनिया को वो प्रभावित करती है। इस कारण से अब लगी मोहिन मिले कऊ मैन जनावों का, मैंने भी ज्यादा परिचय नहीं करवाया और मैं भी लोगों के सामने ज्यादा प्रकट नहीं होना चाहता था, क्योंकि लोक मान्यता अनल सम, ये लोक मान्यता अच्छी नहीं है। हम हमारे चुप रहे, हम हमारे जंगल में आ जाते, बदलते रहते हैं इधर, और इस घनघोर जंगल में इसलिए कोई हमको पहचान नहीं सके। तुलसीदास जी फिर सावधान करते हैं, तुलसी देखि सुवेश भूलहि मूढ़न चतुर नर, सुंदर के की पेकु वचन सुधा सम असन अहि। केवल बाहर का वेश देख करके कोई किसी के ठगाई में नहीं आए, जो बुद्धिमान आदमी होते हैं वो ठगाई में नहीं आते, मूर्ख आदमी आ जाते। मोर कितना अच्छा बोलता है और मोर कितना सुंदर है, देखो माथे के ऊपर तो उसके मुकुट है, सुंदर उसका गला और उसके पांख है, कितना सुंदर लगता है, परंतु और वाणी उसकी कितनी मीठी, बोलता कितना अच्छा है, पर असन अही, खाता क्या है, सांप। आचरण कैसा है मोर का, आचरण बाहर से तो बड़ा अच्छा, हम लोग बाहर से बहुत अच्छा कपड़ा बना दिए, दुनिया को लुभाने के लिए अच्छी अच्छी बात बोल देते हैं, मीठे ढंग से बोलते हैं, परंतु हमको हमारे आचरण देखने चाहिए, आचरण। बहुत सुंदर बात कही तुलसीदास जी ने कि सुंदर के की है पेखु वचन सुधा सम असन अही, सांप खाता है मोर, सांप पकड़ खा जाए। तो वो राजा वो कपटी कहने लगा, इसलिए सुनिए महानुभाव मंत्री जी, ताते गुप्त रहूं जग माई, मैं तो गुप्त रहना चाहता हूं, आज पहली बार आप मुझे मिले हो, मैं सोचता हूं मेरे जीवन में मुझे सिवाय भगवान के भजन के और दूसरा क्या काम करना है, अब मैं और मेरे प्रभु, मेरी सब बात भगवान तो जानते हैं, इसलिए मैं क्यों लोगों को सिद्धि दिखाऊं, क्यों रिझाऊं, कहूं कवन सिद्धि लोक रिझाए, लोगों के सामने रीति सिद्धि दिखाऊं तो मुझे मिलेगा क्या वहां, अब क्या बताऊं, तुम बहुत अच्छे मेरे प्रिय मिले, अब तुम्हारे सामने कुछ बात छिपाऊं तो भी दिल नहीं करता, क्योंकि तुम्हारे जैसा श्रद्धालु मिलेगा कहां, तो भी फिर भी उदास रहना ही चाहता हूं। महाराज ऐसा नहीं है, आप अपना परिचय तो पूरा दीजिए महाराज, आप मेरे पर ही कृपा कीजिए, अच्छी बात है। नाम बताऊं मेरा असली, मेरा नाम असली एक तनु साहब, एक तनु। महाराज आपके नाम का अर्थ क्या है, एक तनु आप क्यों बोलते हैं, मैं महाराज आपका सेवक हूं और आपके चरणों में माथा टेक करके नम्र भाव से पूछता हूं। अच्छा तो हम बताते हैं, आदि सृष्टि उपजी जब ही तब उत्पति भे मोरि नाम एक तनु हेतु तेही देहन धरी बहो। जब से सृष्टि पैदा हुई है तब से हम इसी शरीर के अंदर रहे, तो एक तनु नाम हमारा रहा, हमने कभी दूसरा शरीर धारण नहीं किया। देखो इस कारण से प्रताप भानु का पतन हो गया। जो ऐसी ऐसी अनहोनी बातों पर विश्वास करते हैं ना, तो भले भले आदमी फिसल जाते हैं। इनको विचार करना चाहिए, शरीर तो पांच भौतिक होता है भाई, ये तो नाश का क्रम इसमें लगेगा ही। जब से सृष्टि बनी तब से तो एक भगवान का ही शरीर ऐसा है जो कायम रह सकता है, दूसरा चाहे कितना ही ऊंचा महात्मा हो महापुरुष हो, शरीर तो जाएगा ही। पर उसके लोभ में आ गए, प्रताप भानु जी को लोभ आ गया, गो हो ऐसा कह रहे तो ऐसा ही है। देखो शास्त्र सुना, सत्संग की, यज्ञ किए, पर अपनी बुद्धि के अंदर सत्य को स्वीकारा नहीं उन्होंने। मैं तुमको देख के बताता हूं, तुम प्रताप भानु के मंत्री नहीं हो, मैं तुमको खूब अच्छी तरह से जानता हूं, तुम स्वयं प्रताप भानु राजा हो। कह तापस नृप जानो तो ही तुमने हमारे साथ कपट किया, मंत्री हूं हम ऐसे बोलते हो, पर ऐसा बोलना भी ठीक है, क्योंकि मुझे ये तुम्हारा झूठ बोलना अनुचित नहीं लगा कि राजा को सब जगह अपना पूर्ण परिचय देना भी नहीं चाहिए। सुनो महेश असी नीति जह तह नाम न कह नृप मोहितो ही पर अति प्रीति सोई चतुरता विचारी तब। तुम्हारी चतुरता हमने विचार ली है, नहीं कहना चाहिए तुम प्रताप भानु हो। तेरे बाप का नाम सत्यकेतु था ना? वो कहे अरे महाराज मुझे जान गए, मेरे बाप को जान गए, अरे सबको जानता हूं, ये सब गुरु प्रसाद है, हम सब जानते हैं। और गुरु प्रसाद सब जानिए राजा, कहिए न आपन जानी अकाजा। हम तो अपना परिचय और लोगों को कुछ कहते नहीं, कोई हमारा नुकसान हो जाएगा, इसलिए इतनी बात तुमसे कहिए। थोड़ा तुम्हारे पर मेरा ममत्व जागृत हो गया, अपनापन जागृत हो, इसलिए भाई इतनी बातें कही है। अच्छा राजन तुम्हारे मन में कुछ मांगने की है, हम तपस्या के बल पर जो तुम मांगो उसको देने के लिए तैयार है। मांग जो भूप भाव मन माए। राजा बड़ा खुश हो गया, प्रताप भानु वो चरणों में गिर गया। हे महाराज आप जैसी कृपा सागर के दर्शन बड़े मुश्किल है, आज तक मैंने जो पुण्य प्रभाव पुण्य किए उसके प्रभाव से आपके दर्शन हो गए महाराज। आपके दर्शन क्या हो गए? चार पदार्थ करतल मोरे, धर्म अर्थ काम मोक्ष का फल आपका दर्शन मुझे आज मेरे हथेली पर हो गया। ओहो, और फिर आप इसके ऊपर ये कहते हो कि कुछ मांगो, तब तो महाराज मेरा बेड़ा पार हो गया। आपके लिए तो कोई कठिन बात नहीं है, हमारी थोड़ी सी की इच्छा है। अब बोलो बोलो तुम्हारी क्या इच्छा, जो इच्छा सो पूरी करेंगे। अब देखो उसकी बुद्धि, प्रताप भानु की बुद्धि खराब हो, पहले तो सब कर्म भगवान के अर्पित करके करता था, अज्ञानी था। हृदय न कछु फल अनुसंधाना, कोई उसके हृदय में किसी भी कर्म का कोई फल नहीं चाहता था, ऐसा वो त्यागी। लेकिन एक कुसंग में पड़ गया ना, और जो कुछ बातें वो सुनता था उसको हृदय में धारण पूरा धारण नहीं किया और कुसंग में पड़ गया। थोड़ी देर का कुसंग होता है आदमी को खराब कर देता है, वो कुसंग किया, तब उसकी बुद्धि विकृत हो गई और मांगने लगा। जरा मरण दुख रहित तनु समर जिते नहीं को, एक छत्र रिपु ही न मही राज कलप सत हो। देखो महाराज शरीर तो कभी बूढ़ा न हो और मरे नहीं, ऐसा वरदान दे दो। अब देखो उसकी बुद्धि खराब हुई है, शरीर कभी आज तक बूढ़ा ही न हो और मरे ही नहीं, किसी का भी नहीं रहा, तो प्रताप भानु जी आपका कैसे रहेगा, कैसे मांग रहे हो और किससे मांग रहे हो? कि जरा मरण दुख रहित तनु। अच्छा, और समर जीते नहीं, कोई युद्ध में मुझे कोई न जीत सके, सबसे अजय हो जाऊं। अच्छा, और एक छत्र मेरा साम्राज्य रहे, कोई मेरे सामने शत्रु न रहे, और राज कल्प सत हो, 100 कल्पों तक मेरा शासन रहे। कल्प कितना होता है? ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है वो कल्प होता है। 1000 चतुर्युगी का दिन, 1000 चतुर्युगी की रात, ये है एक कल्प होता है। कल्प, 1 कल्प तक मेरा शासन रहे। तो कपटी क्या बोलता है? हाँ हाँ ऐसा ही हो जाए, जैसे उसने कहा वैसे ही हाँ हो जाएगा। राजा अभी भी नहीं संभला कि मैं क्या तो मांग रहा हूं। अच्छा, मेरा तो मांगने, देखो मांगने वाला तो ऐसे ही मांगा करता है, कुछ ज्यादा मांगता है। देने वाले को तो सोचना चाहिए ना, देने वाला कहता हाँ ऐसे ही हो जाएगा, जाओ। एक बात है बस, सब हो जाएगा। एक बात है कि इस संसार में ब्राह्मणों को प्रसन्न करना चाहिए। एक विप्रकुल छाड़ी बहिसार, एक विप्रकुल ऐसा है कि जो काल से भी बड़ा, सबसे बड़ा होता है। तपबल विप्र सदा बरियारा, तपस्या के कारण से ब्राह्मण सदा से ही श्रेष्ठ होते हैं। और वे ब्राह्मण यदि कभी कोप कर ले, क्रोध कर ले, तो कोई रखने वाला नहीं, उसकी कोई किसी प्रकार से सुरक्षा नहीं है, उसको कोई बचाने वाला नहीं है। तो मैं तुमको एक भुजा से नहीं, दोनों भुजा उठा करके सत्य प्रतिज्ञा से बात कहता हूं, एक ब्राह्मण लोग तुमको शाप नहीं देवे तो तेरा कभी भी नाश नहीं होगा। तोर नाश नहीं कवने उखाला, कितना ही समय बीत जाएगा तेरा नाश नहीं होगा। एक ब्राह्मणों को देखो थोड़ा राजी करना पड़ेगा। महाराज, आप जैसे महापुरुष के वचन निकल गए, अब तो मेरा नाश होगा ही नहीं महाराज, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? तो आप देखो, एक तुम्हारा नाश तो कभी नहीं होगा, तो एक बात है, मिलब हमार भुलाब निज कहूं तो हम ही न खोर। मैं तुमको एक बात कहता हूं कि अपन चार, इस बात में 4 के कान है, 2 कान तुम्हारे 2 कान मेरे, 6ठे के पास यदि तुमने चर्चा कर दी ना, तो भाई उससे फिर तुम्हारा नाश हो जाएगा, जल्दी नाश हो जाएगा, मुझे पता नहीं है। ये बात बहुत गुप्त रहनी चाहिए कि ब्राह्मण के शाप के बिना तुम्हारा नाश नहीं होगा। आन उपाय निधन तव नाही, ब्राह्मणों को प्रसन्न करो तुम, ब्राह्मण प्रसन्न हो जाएंगे, तुम्हारा कोई नाश नहीं कर सकेगा, चाहे भगवान ही आ जाए। जो हरि हर कोप ही मन माही, चाहे भगवान नाराज हो जाए तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़, एक केवल ब्राह्मण। सत्यनाथ पद गहिंद्र प्रभाव, महाराज ठीक है, ब्राह्मण है, गुरु है, माता पिता है, ये यदि क्रोध करने लग जाए तब तो फिर महाराज कौन रखवाला हो सकता है? राख ही गुरु जो कोप विधाता, हो सकता है कि विधाता कोप करे तो बच सकता है, गुरुजी गुरु महाराज बचा सकते हैं, पर गुरु विरोध नहीं कहो जगत रहता। गुरु महाराज यदि विरोध कर ले, गुरु महाराज नाराज हो जाए, गुरु का अर्थ केवल ये लाल कपड़ा करके हम महात्मा हो गए, साधु हो गए, वो गुरु नहीं। गुरु का अर्थ माता पिता, अपने परिवार में बड़े लोग, वो सब गुरु आते हैं। कोई आकर माँ बाप को दुखी करेंगे, उसको ऊपर भगवान भी राजी नहीं होते। माँ बाप को प्रसन्न कर लिया और भगवान नाराज है तो भगवान राजी हो जाएंगे, लेकिन माँ बाप को यदि राजी नहीं किया तो भगवान को राजी कर लोगे, असंभव बात है। तो महाराज, अब आप बताओ कि ब्राह्मण लोग कैसे मेरे पर कृपा करें? हाँ, ये बात तो अच्छी पूछी तुमने, बड़ी विचित्र बात है, ब्राह्मण सदा ही प्रसन्न रहे, ये है तो बड़ी कष्ट साध्य बात। मैं एक युक्ति जानता हूं, पर क्या करूं, मैं भी तो कहीं जाता आता नहीं ना, मैंने भी तो एक जगह ही पड़े रहने का विचार कर लिया। आज लगे यार जब ते भयऊ काऊ के गृह ग्रामन गया हूं, मैं तुम्हारे घर आऊं तुम्हारे नगर में आऊं तब तो ऐसा उपाय कर भी लूं। अब क्या करूं, मैं तो कहीं जा सकता नहीं और मेरे गए बिना वो काम होगा नहीं। मम अधीन जुगति नृप सोई, मैं जो जुगति जानता हूं तो मेरे ही अधीन है और मेरा तेरे यहां जाना होगा नहीं। अब क्या बताए, समस्या ये एक है। और जो न जाऊं यदि तुम्हारे घर नहीं जाऊं तो बड़ा भारी अकाज हो जाएगा, आज बड़ा भारी असमंजस हो गया, क्या करूं। सुनी महीस बोले मृदु बानी राजा ने, हा महाराज नाथ निगम असी नीत, शास्त्रों में तो लिखा है बड़े पुरुष बोलते हैं कि महापुरुष होते हैं, बड़े पुरुष होते हैं, माता पिता होते हैं, वो छोटों पर स्वाभाविक स्नेह करते हैं। बच्चा जब किसी बात के लिए रोने लगता है तो माँ का दिल पिघल जाता है, पिता भी पिघल जाते हैं। ये कृपा एक ऐसी चीज होती है महाराज जो बड़ों को झुका लेती है और बड़े भी उनको प्रसन्न देख करके प्रसन्न होते हैं। देखो महाराज, ये पर्वतों के ऊपर घास उगता है, पर्वत कितने महान है, इनके ऊपर उगने वाला घास तो तुच्छ तिनका ही तो होता है। तो गिरी निज सिरानी सदा तृण धरई, जलदी अगाध समुद्र कितना अगाध है पर समुद्र के ऊपर कौन रहता है, झाग रहता है झाग। संतत धरनी धरत सिर रेनु, और ये पृथ्वी अपने सिर के ऊपर मिट्टी के कण रखती है साहब। तो जितने बड़े हैं वो छोटों को इतने ऊंचाई रखते हैं। इसलिए महाराज यदि आपको मेरे वहां आने में मेरा काम होता हो तो आप पधारिए महाराज, मेरे लिए थोड़ा आप कष्ट भी सहन कर लो। समुद्र भी सहन करता है, पृथ्वी सहन करती है, पर्वत सहन करते हैं, तो आप भी कर लीजिए। हाँ, बात तो तुमने सही कही है, तुम्हारे जैसे राजा का काम बनना तो बहुत अच्छी बात है, तुम हमारे हृदय के भगत हो इसको मैं पहचान गया। मैंने जोग जुगति प्रभाव से विचार कर लिया है कि तुम्हारा काम बन जाएगा। बस एक बात है कि ब्राह्मण कैसे राजी होंगे कि मैं तो रसोई मेरे हाथ से बनाऊंगा और तुम अपने हाथ से पुरसोगे, मैं तो रसोई तुमको दूंगा बना बना करके और तुम लेकर के ये सब लाडू राम जलेबी राम सब तुम पुरसो अपने हाथ से। जो नरेश मैं करो रसोई और तुम पुरसो मुहि जानन कोई, और मुझे कोई पहचान नहीं सके। अब वो मेरा बनाया हुआ, मैं इतने मंत्र तंत्र युक्ति से ऐसी ऐसी चीजें मिला के भोजन बनाऊंगा और उस भोजन को जो जो कर लेंगे सोई सोई तब आयुष अनुसरी वही तुम्हारी आज्ञा का पालन करेंगे, वही ब्राह्मण कहेंगे बोलो राजन तुम जो कहो वो हम करने के लिए तैयार, मेरी भोजन में ऐसी शक्ति है। हजारों हजारों ब्राह्मणों को नित्य नूतन द्विज सहस सत, सहज सत हो माने हजार का सौ से गुणा करो तो 1,00,000, रोज 1,00,000 ब्राह्मणों को, नए नए ब्राह्मणों को परिवार सहित भोजन कराने का संकल्प ले, खूब भोजन कराओ उनको, सब ब्राह्मण तुम्हारे बस में हो जाएंगे। और देखो एक बात है, मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा और मैं ऐसे नहीं आऊंगा जैसे अभी आया हुआ हूं, ये रूप नहीं आऊंगा, मैं तुम्हारा जो रसोईदार है ना उसके रूप में आऊंगा, जो तुम्हारा पुरोहित है भोजन बनाने वाला है ना उस भोजन बनाने वाले ब्राह्मण के रूप में मैं आ जाऊंगा, और वहां तुम किसी से कहना नहीं, मैं अपनी माया के साथ आऊंगा और तुम्हारा जो वास्तविक रसोईया है उसको मैं अपनी माया से गायब कर दूंगा। ये तपस्या से सब संभव है, कैसे होगा क्या होगा हमारे पर छोड़ो, ये टेंशन हमारी है तुम्हारी नहीं है, मैं अपने आप गायब कर दूंगा। हमारे यहां ऐसी ऐसी जगह पड़ी है 1 साल तक हम उसको यहां गायब देंगे, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा और उसके वेश में मैं रहूंगा, उसके परिवार में भी रहूंगा, सब करूंगा, किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा, उस जैसा ही बोलना होगा मेरा, बिल्कुल उस जैसा रूप रंग स्वभाव सब हम कर लेंगे। आज के तीसरे दिन आएंगे, ठीक है, अब आराम करो, अब तुम आराम करो। शयन केंद्र निपाय, राजा तो बड़े आनंद से थकावा था और आश्वासन पूरा मिल गया, अब आराम से हमारा तो खूब लंबा शासन होगा, आराम से वो पड़ती नींद आ गई उसको तो। लेकिन भाई उसको नींद नहीं आई, जिसके मन में बैर होता है, विरोध होता है, जिसके मन में कुछ खटपट होती है, उसको नींद नहीं आती। उसने देखा अब क्या करें, तो काल केतु नाम का एक राक्षस उसी जंगल में रहता था, वो राक्षस और ये कपट मुनि दोनों की साठ गांठ हो गई। क्यों हुई कि इस काल केतु का जो भाई था उस भाई को इसी राजा ने मारा था। तो देखो दुश्मन का दुश्मन होता है ना, वो मित्र होता है, हमारा दुश्मन और एक हमारा और दुश्मन, वो दोनों अगाध मित्र हो जाते हैं। काल केतु निश्चर तय आवा, जय सूकर हुए निरपय बुलावा, उसी ने सुअर बन करके माया जाल रच करके वहां तक पहुंचा दिया था उसको। परम मित्र तापस निरपकेरा, वो परम मित्र अगाध मित्र उसका, प्रगाढ़ मित्रता। इन दोनों ने आपस में बात की अब क्या करें, कि बस सब काम हो गया, आओ तब सब काम हो गया। तेके सतसुत अरुदस भाई, खल अति अजय देव दुखदाई, उसके सो बेटा थे, दस भाई थे देवताओं को दुख देने वाले काल केतु के, उन सब को इसने मार दिया था। उसने भी अपना पीछा बदला लेने का विचार किया और दोनों बैठ करके कहा कि अब अपने को खूब अच्छे ढंग से विचार करना है। इसलिए कहते हैं पार्वती, रिपु तेजसी अकेल अपि लघुकर गनियंता, कोई हमारा शत्रु हो और अपने में कितना ही बल हो तो भी शत्रु, आखिर शत्रु ये छोटे शत्रु को भी कभी भी छोटा मान करके उसकी बेपरवाही नहीं करनी चाहिए। क्यों क्यों कहे कि देखते नहीं, अभी 22 जुलाई को सूर्य ग्रहण आया था। अजहु देत दुख रवि शशि सिर अवशेषित राहु, राहु है कितना, इतना ही तो है राहु, है तो वो छोटा, केवल सिर अवशेषित, केवल सिर ही है, पर आज तक वो कभी चंद्रमा को और कभी सूर्य को ग्रस्त ही रहता है। सूर्य चंद्रमा यदि उस समय इसका कोई न कोई उपाय कर देते तो कर देते, उनका क्या हमारा क्या करेगा, तो देखो ग्रस्त ही रहता है। हर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण, हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण। तो अब वो निशाचर काल के तो कहने लगा कि भाई तुमने बड़ा अच्छा किया, अब सब तुम सोखते वो हम अब करेंगे सबका, बिन औषधि व्याधि विधि खोई, बिना दवाई के हम इलाज कर देंगे। हम आज से चौथे दिन तक ये कोई मिलेगा ही नहीं अपने को, अच्छी बात है। अब देखो पहला काम तो मैं ये करता हूं, क्या कि इसको अभी मैं तुरंत इसकी राजधानी में भेजता हूं। निपय नारी पै शयन कर आई, उसने अपनी माया से, राक्षसी माया, राक्षस लोग माया करते थे, माया से उसको सीधा महल में पहुंचा दिया। और राजा का जो उपरोहित था, पुरोहित था, उसको वहां से हर लिया, ले जाकर के एक गुफा में रख दिया और स्वयं उपरोहित का वेश बना करके वहां घर पर चला गया। अब घर वालों को क्या पता ऐसा कुछ अदला बदली हुई है। राजा ने देखा कि भाई हम अकस्मात यहां आ गए अपने महल में, ओहो उस तपस्वी का प्रभाव है, ओहो उन्होंने पहले ही कह दिया तुम आराम से सो जाओ सब काम हो जाएगा, तो देखो यही देखो उन्होंने हमको, उसके विश्वास और ज्यादा हो गया। पर उन्होंने ये कहा था कि किसी को कहना नहीं, अब यदि रानी मेरे पास सो रही है ये कहेगी कि आप अकस्मात कब आए तो क्या कहूंगा, और कोई लोग कहेंगे कि आप कैसे आए, तो वो चुपचाप रात को उठ करके और अपने घोड़े को घुड़साल से निकाल करके और जंगल में जाके बैठ गया। प्रातः काल हुआ, हाँ मैं आ गया हूं, ढिंडोरा पिटवा दिया उसने। तो कानन गयऊ बाज चढ़ी ते ही, पुरनर नारिन जानेऊ के ही, गए जाम जग भूपति आवा, घर घर उत्सव बाज बजावा। खूब उत्सव लगाओ, बड़ा आनंद भाव साहब, आगे आगे खूब जो है उत्साह के साथ उसको लेकर के आए। एक दिन वार दूसरे दिन वो उपरोहित आ गए, राजा से कहा हमारा मैं अच्छा हो, हाँ हाँ साहब भोजन बनाओ भोजन बनाओ। तो वो भोजन बनाया, ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया और खूब बढ़िया बढ़िया भोजन बनाए। माया मय तई कीन रसोई, बड़े माया से उसने रसोई बनाई। व्यंजन बहुगनी सकई न कोई, इतने व्यंजन इतने पदार्थ कोई गिन नहीं सके ऐसे। और उनके अंदर क्या क्या विभिन्न निगिन कर आम आमिस रांधा, कई कई पशुओं का मांस था लाकर उन मिठाइयों में डाल दिया, और कईयों के अंदर ब्राह्मणों का मांस डाल दिया। ब्राह्मणों को बुलाया भोजन करने के लिए, ब्राह्मण आए। अब ब्राह्मण आकर के बैठने भोजन करने लगे, तब इसी उपरोहित बने हुए काल केतु ने माया से आकाशवाणी से कहा, ब्राह्मणों आप लोग ये भोजन मत करना, इस भोजन में बड़ी भारी हानि की बात है, इस रसोई के अंदर ब्राह्मणों का मांस मिलाया हुआ है, सावधान आप ये भोजन मत करना। खुद नहीं आकाशवाणी करवाई, तब जो है सब ब्राह्मण एक साथ बिगड़ गए। जाय निशाचर हो तुम मूड सहित परिवार, राजन तुमने हमको यहाँ भोजन करने के लिए बुलाया या मांस खिलाने के लिए बुलाया, तुम सारे कुल सहित राक्षस बनोगे। छत्र बंधुते विप्र बुलाई, घाले लिए सहित समुदाय, ईश्वर राखा धर्म हमारा, ये तो बिचारे भगवान ने हमारा धर्म रख दिया आकाशवाणी करके, तूने तो हमारा सब धर्म मिटिया मिट कर दिया, तुम्हारे कुल में कोई जल देने वाला नहीं रहेगा, सब मर जाएंगे, एक साल के अंदर अंदर तेरा नाश हो जाएगा, छह महीने में ही नाश हो जाएगा, संवत मध्य दास सब हो, छह महीने में तेरा नाश हो जाएगा। ब्राह्मणी कांपने लग गया। अब वो तो ही आकाशवाणी इस राक्षस की कराई हुई, इधर से उसने जितना भी पुण्य धर्म अपने जीवन में किया था ना, उस कारण से असली आकाशवाणी हुई। ओ ब्राह्मण आपने ये श्राप तो दिया लेकिन सोच विचार करके नहीं दिया, आपको पहले राजा को बुलाकर पूछना चाहिए था कि राजन तुम तो सदा ही अच्छा काम करने वाले थे, तुम बड़े पवित्र थे, तुमने वेद पुराणों का हमसे श्रवण किया है, उत्तम उत्तम तुमने यज्ञ कराए, राजन आज क्या बात है तुम्हारे मांस तुम्हारे भोजन में ये मांस कैसे आ गया, कुछ पूछना चाहिए था, कुछ तुमने नहीं पूछा, सीधा ही भड़क गए और श्राप दे दिया। नहीं अपराध भूप कछ चीना, बिचारे राजा का कोई अपराध नहीं है। तो ब्राह्मण भी चौके, बात तो ठीक है। अब वो बेचारा राजा घबरा करके वहां उसने देखा कि मैं उन महात्मा जी से कहूं कि महात्मा जी क्या हो गया, यूं गया रसोई में तो वो उपरोहित तो वहां था ही नहीं, और तहन असन नहीं विप्र सुवारा, फिरे उराऊ मन सोचा पारा, वहां सब भोजन गायब, जितना भोजन बनाया हुआ सब भोजन गायब, वो उपरोहित गायब, कुछ नहीं था, सब माया का एक खेल था। लेकिन ब्राह्मणों के मुख से तो सब ये साफ छूट गया, तो छूट ही गया। अब कहा उसने, सारी बात बताई कि महाराज मैं तो ऐसे ऐसे ठगा गया। तो ब्राह्मणों ने कहा, भूपति भावी मिटई नहीं जदपि न दूषण तोर, किए अन्यथा होई नहीं विप्रश्राप अति घोर। अब क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ से तो तीर निकल चुका, बाजी निकल चुकी है, क्या करें। सब ब्राह्मण लोग तो अपने अपने घर चले गए। फिर बाद में सब विचार करते हैं कि देखो क्या विधाता का ये क्रम है, जो विधाता हंस बनाता है वही विधाता कौवा भी बना देता है। कौवा होता है वो कितनी गंदी चीजें खाता है, हंस होता है केवल मोती चुगता है, वो विधाता देखो क्या किया है। उपरोहित ही अब उसने क्या किया, असली उपरोहित को तो वहां पहुंचा दिया अपने घर पर। इधर उस तपस्वी राजा ने, कपटी तपस्वी मुनि ने सब राजाओं को निमंत्रण दिया, सेना इकट्ठी की और इसी के ऊपर आक्रमण किया, और आक्रमण करके और इसको सबको मार दिया। और भाई सत्य केतु के कुल में कोई नहीं रहा। इसलिए सुनो भरद्वाज जी, जब जिसके दिनमान फिरते हैं ना, तब धूरी मेरु सम, ये धूल है ना, धूल के कण ये सुमेरु जितना ताकत वाले हो जाते हैं। और जनक जम अपना बाप भी यमराज हो जाता है, और ब्याल सम दाम और डोरी होती है वो सांप हो जाया करती है जब दिनमान फिरते हैं। तब फिर बाद में वही रावण हुआ, प्रताप भानु तो रावण हुआ, अरिमर्दन था वो कुंभकर्ण हुआ, और जो जो एक एक था ना उनका मंत्री धर्मरुचि वो विभीषण हुआ। ये जब पैदा हुए पुलस्त्य कुल में, ब्राह्मण कुल में, ब्राह्मण कुल में क्यों हुए कि ब्राह्मण कुल में इसलिए पैदा हुए, ब्राह्मणों ने श्राप दिया इसलिए ब्राह्मण कुल में हुए। पुलस्त्य कुल बड़ा श्रेष्ठ कुल है, उसके अंदर ये पैदा हुए। क्यों हुआ कि देखो उन ब्राह्मणों ने गलती की ना, बिना सोचे समझे श्राप दिया, बिना सोचे समझे श्राप दिया तो ब्राह्मण कुल में उन्होंने जन्म लेकर के ब्राह्मणों को ही अपमानित किया कि रावण ब्राह्मणों की तुमने ऐसा किया। बड़ी विचित्र बातें हैं ये। इधर विधाता ने तीनों जने तपस्या करने लगे, रावण कुंभकर्ण विभीषण। विधाता ने पूछा वरदान मांगो, तो रावण ने कह दिया हम काहू के मरे ही न मारे, केवल बंदर और मनुष्य के अलावा हम किसी से नहीं मरे। एक तो ये वरदान, और कुंभकर्ण से कहा कि तुम मांगो, तो देवता घबराए क्योंकि वो जानते थे कि ये क्या मांगेगा। वो मांग तो ये रहा था कि मैं एक दिन सोऊं और 6 महीने जगूं, सरस्वती से प्रार्थना की, सरस्वती देवी करो तुम कोई निहाल करो हमको। सरस्वती आकर के जीभ में बैठ गई और उसने कहा कि मैं 6 महीने सोऊं एक दिन जगूं, तथास्तु। तथास्तु निकलने के बाद ओहो महाराज मैंने तो कुछ मांगना चाहा था और नहीं, भाई तुमने मांगा सो हमने दे दिया। विभीषण जी के पास गए, विभीषण जी तुम कुछ मांगो, तो गए विभीषण पास पुनि कहे पुत्र वर मांग, ते ही मांगे भगवंत पद कमल अमल अनुराग। उसने भगवान के चरणों में प्रेम मांगा। तो जब तक रावण ने चरणों का प्रहार नहीं किया ना, चरणों के प्रहार का अर्थ क्या था कि अरे तूने वरदान के समय में चरणों में प्रेम मांगा था, तो जाओ उनके चरणों में, जाओ उनके चरणों में। तो ये विभीषण चरणों में आकर के भगवान के चरणों में ही गया। मंदोदरी का रावण के साथ विवाह हो गया। और ये जो लंका थी ना, ये त्रिकूट पर्वत के ऊपर, ये कुबेर की राजधानी थी, यक्षों की राजधानी। कुबेर रावण का सौतेला भाई, रावण ने कुबेर को वहां से हटा हटू करके अपना वहां पर स्थान संभाल लिया। सब निशाचर लोग वहां पर रहने लग गए, कुबेर को मार पीट करके उसका पुष्पक विमान भी छीन लिया। रावण इतना बलवान और शिवजी का भक्त, कैलाश पर्वत को उठा लेता, कौतुक ही कैलाश उन्हीं लीन से ना जाए उठाए, ऐसे ऐसे वो करता था। कुंभकर्ण बड़ा बलवान, अब इन सबके ताकत के सामने कौन क्या करे। और फिर मेघनाद तपस्या किस कारण से, उसमें बड़ी बड़ी शक्ति आ गई। अब जो है एक बार ये दशमुख रावण अपने सभा में बैठा हुआ था, परिवार सहित बैठा हुआ था, उसने उद्घोषणा की, देखो भाई हम सब रजनीचर बड़े बलवान हैं, हमारा कोई विरोधी नहीं, हमारे विरोधी केवल देवता हैं, और देवताओं का नाश एक ही कारण से हो सकता है कि यज्ञ है, दान है, पुण्य है, श्रेष्ठ कर्म है, ये सब नष्ट कर दो तो देवता लोग बलहीन हो जाएंगे। मेघनाद तुम्हारा यही काम है कि जहां कहीं यज्ञ वगैरह होता है उसको नष्ट करो और देवताओं को जाकर के युद्ध करो। ऐसा ही मेघनाद ने किया। मेघनाद तो भाई बड़ा बलवान निकला, बड़े बड़े दिग्पालों को उन्होंने पानी भरा दिया, इतना बल था इन लोगों में। सब जगह यज्ञ वगैरह बंद होने से, शास्त्रों की चर्चा बंद होने से, सत्संग वगैरह का सब बंद होने से लोग जो है बड़े दुखी होने लगे। आचार विचार सबका भ्रष्ट हो गया। नई हरि भगति यज्ञ तप ज्ञाना, सपने सुनियन वेद पुराना, ये सब आचार विचार भ्रष्ट हो गया। तब जो है पृथ्वी को बड़ा दुख हुआ। तब पृथ्वी ने सोचा कि अब मैं क्या करूंगा। अब वो जो करेगी भाई उसका प्रसंग कल चलेगा। जय सीताराम 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 जय सीताराम जय जय सीताराम 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 जय सीताराम
जय सीताराम 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 जय सीताराम
जय सीताराम 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 जय सीताराम
जय
जय सीताराम 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 जय सीताराम
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 सियावर राम चंद्र की
जय
मोर मुकुट वंशी वाणी
की जय
अनंत श्री हरि राम दास जी महाराज की
जय
अनंत कोटि सर्व संत महात्माओं की
जय।